संतप्त मानस शांत हों, इनके मूल के वाणी के वर्धमान महान गुण विचरण हमारे। चौसठ में पैंसठ में गाथा हो गई थी ना, पैंसठ छियासठ में टीका भी हो गई थी ना। तेरी प्रकरण चल रहा था तो शरीर सुख का कारण नहीं, तो शरीर सुख रूप नहीं होता है, आत्मा स्वयं स्वभाव से ही सुख रूप है। यदि शरीर को सुख का कारण मानेंगे तो सिद्ध भगवान फिर सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके शरीर नहीं है। सिद्ध भगवान के जो सुख है वो तो शरीर के बिना सुख है। तो कहते जिनके शरीर है ऐसे लोगों के भी जो सुख दुख देखने में आते हैं वे भी शरीर के कारण नहीं होते हैं, आत्मा के कारण ही होते हैं। तो ये बात ही मुख्य रूप से बताई थी। अब आचार्य जयसेन की टीका के बारे में लिखते हैं। आचार्य जयसेन तो तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में पैंसठवीं गाथा की टीका की उत्थानिका में ही लिखते हैं कि सिद्धों के शरीर के अभाव में भी सुख है, यह बताने के लिए ही शरीर सुख का कारण नहीं है यह व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं कि शरीर सुख का कारण नहीं है, शरीर सुख रूप नहीं है, ये बात सिद्ध ही क्यों कर रहे, क्या मतलब है? तो कहते हैं सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं और उनके शरीर नहीं है, ये बात ही बताने के लिए ये बात कर रहे हैं। जैसे आचार्य ऐसा कहते हैं। टीका के अंत में गाथा के तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि संसारी जीवों को जो इंद्रिय सुख है उसका भी उपादान कारण जीव ही है, शरीर नहीं। तो सिद्ध के जो अतीन्द्रिय सुख है उसका उपादान कारण भी आत्मा ही है ना। इस पर यदि कोई कहे कि मनुष्य त्रेंचों का शरीर अनेक व्याधियों से भरा है अतः वह सुख का कारण नहीं होगा, किंतु देवों का शरीर तो वैक्रियक होता है, दिव्य होता है और व्याधियों से रहित होता है, वह तो सुख का कारण होगा ही। उसको समझाते हुए कहते हैं कि यह दिव्य शरीर भी सुख का कारण नहीं है, अतीन्द्रिय सुख का कारण तो शरीर है ही नहीं, इंद्रिय सुख दुख का कारण भी शरीर नहीं, आत्मा का अशुद्ध उपादान ही है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि अतीन्द्रिय सुख का कारण आत्मा का शुद्ध उपादान है और इंद्रिय सुख दुख का कारण भी आत्मा का अशुद्ध उपादान है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जगत के सामने ये बात बहुत कई दफे रखी, यहाँ तो सीधी स्पष्ट आचार्य की भाषा में ही आ रही है कि यदि हमारे अंदर की योग्यता को हम नहीं मानेंगे, विकारी पर्याय होने में भी कारण, तो विकार फिर हमारा स्वभाव हो जाएगा और फिर निरंतर वो हमारा विकार बना रहेगा और हमारे पास छूटने का साधन नहीं रहेगा, क्योंकि हम शरीर के कारण दुख हैं, दुखी हैं, तो शरीर से रहित हो तो शरीर से रहित तो हो नहीं सकते। अभी ये संलेखना का प्रकरण आया था, इसमें भी ये बात आई थी कि हम इस शरीर से छूटने के लिए कहते ना शरीर को कृश करें और कसायों को कृश करें, दोनों बात आती है ना। तो कहते शरीर तो जो छूटेगा तो एक मुक्त जीवों को छोड़कर और बाकी जितने भी जीव हैं संसारी, वो तो एक समय दो समय से भी ज्यादा शरीर के बिना रहेंगे ही नहीं, तो छूटने का हमारे पास रास्ता कहाँ है। हम दुखों से घबरा कर इस शरीर से छूटने का प्रयास करें, हम अकेली यही देह थोड़ी है, हम एक दो तीन समय में के भीतर ही दूसरी देह धारण कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कि वो देह से छूटना कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, वो तो देह छूट रही हो और सारे संयोग छूट रहे हों तो उसे सहज भाव से स्वीकृत करना, इसका नाम संलेखना है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे अपन कहते हैं ना कि अभी मौत मनाए हमने कि भाई तुम मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो वो कहता नहीं मैं तो जाऊंगा मैं तो जाऊंगा मैं तो जाऊंगा, तो एकदम गुस्सा हो गया, हम कहते जा धक्का मार के जा 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 चल धक्का मार के निकाल लेते। अरे भाई यदि तुझे भेजना ही है ना तो वो तो जा ही रहा है, अब तुम उस पर नाराज हो गए तो धक्का मार के क्यों निकालता है। ऐसे देह के साथ थोड़ी कि वो देह ने हमारी अनुकूलता नहीं बरत रही, मान लो हमारे धर्म में वो साधन में साथ नहीं दे रही, तो इसलिए हम उसके विरुद्ध हो जाएं और उसे क्रश करने लग जाएं, वो तो अजीब है, वो तो चेतन तो है नहीं, कोई उसे तो इससे कोई प्रयोजन नहीं है, है ना। वो कहते हमको यदि या तो ठीक रहे, और ठीक नहीं रहेगा तो हम उसको मार डालेंगे, मतलब हम इसको छिन्न भिन्न कर देंगे क्रश कर देंगे, ऐसी देश प्रणति का नाम संलेखना नहीं है क्या। वो तो स्वयं क्षीण हो रही है हर एक चीज की, वैसे तो पर्याय प्रति एक समय में ही बदलती है, अभी उस समय की उस पर्याय की बात मत करो, अभी तो ये जो द्रव्य पर्याय है ना, मनुष्य पर्यंत देव नारकी, इसे जानते हो द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय का अंतर जानते हो है? ज्ञान गुण की पर्याय मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान अभिज्ञान ज्ञान मन पर्याय ज्ञान है, ये तो सबकी समझ में आती है, लेकिन द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि एक गुण की पर्याय को गुण पर्याय कहते हैं, तो सब गुणों की मिली हुई पर्याय है ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुण पर्यायों के समूह को द्रव्य पर्याय कहेंगे, इसी देश सच्चा न्याय है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, एक द्रव्य की पर्याय को द्रव्य पर्याय नहीं कहते हैं, बल्कि अनेक द्रव्य की मिली हुई पर्यायों का नाम द्रव्य है, द्रव्य पर्याय है। और वो जो समान जाति और असमान जाति के भेद से दो प्रकार की होती हैं, तो जो पुद्गल की स्कंद हैं वो समान जाति द्रव्य पर्याय हैं, और जीव पुद्गल के मिले हुए जो अवस्थाएं हैं ना, तो सशरीर जीव चारों गतियों के सशरीर जीव, ये सब दूसरे प्रकार की सब असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। तो इस असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात चलती है, तो इस असमान जाति द्रव्य पर्याय इसका भी तो काल तो नक्की ही है ना, जब काल नक्की होगी तो उसके क्षीण होकर उस अवस्था को प्राप्त होने में भी एक क्रमिक विकास है। क्रमिक विकास का मतलब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का लंबा सिलसिला है कि वो क्षीण होते होते अब वो एकदम हो जाए, तो वो क्षीण हो रही ना, हमको सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से उसको देखना है, क्षीण हो रही हो तो क्षीण हो रही, तो कहते हैं ऐसा होते होते और वो आदमी अच्छा होने लगता है, एकदम स्वस्थ हो जाता है, तो क्या कह रहे कुछ नहीं। यदि वो क्षीण हो रही तो हम क्षीण होते हुए को देखते हुए ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, और यदि वो अच्छी हो रही तो अच्छी होते हुए ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, मतलब हमें उसके विरुद्ध राग देश से कुछ नहीं करना। जैसे बहुत भजन बन गए हैं जो हमको और भ्रमित करते हैं, जैसे क्या भाई ये बेरन काया तूने जग भरमाया है, मैंने तेरी कितनी सेवा करी और तूने मेरा साथ नहीं दिया, ऐसा एक भजन है ना। तो हमारे एक दाऊ थे, दाऊ बहुत बोला करते थे हैं, कि उसको बिल्कुल शत्रु जैसा घोषित करके कि उसने कोई तुमसे वादा किया था और वो बदल गई, मैंने तेरे इतनी इतनी सेवा की, मैंने तेरे को भक्त सबक खिलाया और मैं इसमें नरक लाने की मैंने चिंता नहीं करी है, लेकिन तेरे को सब तरीके से पुष्ट किया और आज तुम धोखा दे रही, ऐसा कुछ है नहीं। उसके साथ तो महामूर्खता है, क्योंकि वो तो अजीब है, वो तो ऐसे कुछ सोचते ही नहीं। मतलब एक आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र तो उसने किया हो, ऐसा रंच मात्र है ही नहीं, मेरा मतलब है ना। तो उसको कह करके क्या फायदा है। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि शरीरादि संयोग ना तो सुख के कारण है और ना दुख के कारण है, क्योंकि वे तो अपने आत्मा के लिए परद्रव्य हैं। परद्रव्य ना तो हमें सुख ही देता है और ना दुख ही देता है, हमारे सुख दुख के कारण हम में ही विद्यमान हैं। हम अपनी पर्याय स्वभावगत योग्यता के कारण जब पर पदार्थों में अपनापन करते हैं, उनके लक्ष्य से राग द्वेष करते हैं, उन्हें सुख दुख का कारण मानते हैं, तो स्वयं सुखी दुखी होते हैं। आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला अतीन्द्रिय सुख तो शरीरादि संयोगों के कारण होता ही नहीं, किंतु लौकिक सुख दुख इंद्रिय जन्य सुख दुख भी देहादि संयोगों के कारण नहीं होते। तात्पर्य यह है कि देह की क्रिया से न धर्म होता है, न पुण्य होता है और न पाप होता है, ये सभी भाव आत्मा से ही होते हैं। देह के साथ तो इनका एक निमित्त निमित्तक संबंध है। तो हमने तुमने तारी ने एक जगह लिखा है ना कि यद्यपि पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती, तथापि परिणाम विशुद्धे कार्या, सारी परिणामों की विशुद्धि के लिए इनके त्याग का उपदेश दिया जाता है। भाषा ऐसी बोली जाती है कि मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने स्त्री को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, मकान को छोड़ा, जायदाद को छोड़ा, है ना। वास्तव में तो अंदर से जो राग है वो कम होता है। पहले सबसे पहले तो मिथ्यात्व छूटता है, मिथ्यात्व छूटता है मैंने पहले ये मानना छूटता है कि ये मेरे हैं, फिर भी वो अपने पास विद्यमान रहते हैं, वो पुण्य पाप के अनुसार संयोग तो रहेंगे ना, लोकाकाश के लोक में। तो पहले सबसे पहले ये निर्णय होता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है। यदि ये निर्णय नहीं हुआ तो हम कितना ही इस जगत को छोड़ दें, समझे ना, तो भी ये रंच मात्र भी नहीं छूटते। इनमें जैसे इन्हें अपना मानना वो इनडायरेक्ट वे में बने ही रहता है, जैसे हमारे कहे मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तुम नहीं करो, मैं सब छोड़ दूंगा, शरीर को ऐसा कर दूंगा, तो तुम कुछ कर नहीं सकते। ये बात हमारे चित्त में स्वीकृति नहीं होती, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। अब अगली गाथा में अपन पढ़ते हैं। विगत गाथाओं में जोर देकर यह कहते आ रहे हैं कि शरीरधारी प्राणियों को सुख दुख का कारण शरीर नहीं है, अपितु उनका आत्मा ही स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से अथवा अशुद्ध उपादान से स्वयं संसारिक दुख रूप परिणत होता है। अब आगामी गाथाओं में यह कह रहे हैं कि न केवल देह ही अपितु पांचों इंद्रियों के विषय भी संसारी जीवों के
सुख दुख में कारण नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि संसारी जीव अपनी अशुद्ध उपादानगत योग्यता के कारण सुखी दुखी हैं और सिद्ध भगवान अपनी शुद्ध उपादानगत योग्यता के कारण अनंत सुखी हैं। इन गाथाओं की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद लिखते हैं कि आत्मा स्वयं सुख परिणाम की शक्ति से संपन्न है, अतः उसे पंचेंद्री के विषय अकिंचित कर हैं आत्मा का सुख परिणामत्व दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। गाथाओं का धन्यवाद। ये सुखाधिकार की अंतिम गाथाएं हैं। जो ज्ञान अधिकार की चर्चा खत्म हुई ना, उसके बाद सुखाधिकार में क्या विषय आया है? बस यही बात कह लो कभी अतीन्द्रिय सुख ही सुख है और इंद्रिय सुख सुख नहीं है, और जो भी है इंद्रिय सुख सुख है दुख है लौकिक दृष्टि से, लेकिन वो परद्रव्य के कारण दंश मात्र ही नहीं। तो पहले उन्होंने कहा शरीर सुख का कारण नहीं है, तो इंद्रियां सुख का कारण नहीं है, ये कह करके तो यहां से लिया। पर अभी एक कह रहा है कि ये इंद्रियां जिन विषयों को ग्रहण करती हैं और उनमें आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है, तो वे जो विषय भी सुख दुख के कारण नहीं है। अंतर समझ में आया? इंद्रियां भी नहीं, इंद्रियां माने शरीर, ये पांचों इंद्रियों के समुदाय के अलावा शरीर क्या है, और शरीर के अलावा पांच इंद्रियां कहां हैं? तो कहते शरीर ये पांचों इंद्रियां ये भी सुख दुख के कारण नहीं है, और इनके भोगने में आने वाली वस्तु, जैसे कहते ठंडी हवा लगी हम सर, अब गर्मियों के दिन हैं तो वो हमको अनुकूलता का वेदन उसमें हुआ तो हम सुखी, हमने सुख अनुभव किया, तो कहते वो ठंडी हवा भी सुख दुख का कारण नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है और इंद्रियों के विषय भी सुख दुख के कारण नहीं है, क्योंकि सारे जगत की दृष्टि इन्हीं पर लगी है, बस इसका त्याग कर दो उसका त्याग कर दो, या तो ग्रहण कर ग्रहण ग्रहण करने की सब बात करते हैं या त्याग करने की बात करते हैं। एक मैंने जगह लिखा ऐसा धर्म के 10 लक्षण में ही होगा कि ये सब बात करते हैं लेकिन ये कोई नहीं कहता कि ये अपने हैं कि नहीं है, या तो इनको ग्रहण करो और या इनको त्यागो। हिंसा के मामले में लिखा है कि हम परजीवों को मारें या नहीं मारें बचाएं, एक ऐसा मत निकला अभी मेनका गांधी उसका प्रतिपादन करती है कि अहिंसा अकेली हम दूसरे जीवों को नहीं मारना ये अहिंसा नहीं है, बल्कि उसे बचाना अहिंसा है। क्या जेंधर में तो ऐसा है ही नहीं, वो तो कहते ना मारना ना बचाना, मारने का भाव भी हिंसा है बचाने का भाव भी हिंसा है, पर में हस्तक्षेप है कि आता कि नहीं आता, और वो ये कहते कि नहीं नहीं कि वो तो ऐसा होना चाहिए कि इतने जो पशु पक्षी हैं ये कितने दुखी हैं तो इनको हम दाना देवें खिलाएं, फिर गौशाला खोलें, फिर पक्षियों के अस्पताल खोलें, फिर पक्षियों का ये सब आप समझिए ना करने लग जाए, जहां जहां गिरे जहां जहां गिरते। एक लड़का हमारे यहाँ है, कोई कहता है ना कि जहां भी कोई पक्षी घायल हो गया है तो वो दौड़ के जाता है, तो हर चीज को छोड़ छाड़ करके भी वो उसको बचाएगा। तो मैं ये नहीं कहता हूं कोई खोटा काम है, लेकिन ये कि ऐसे काम में हम लग जाए तो कोई पक्षी निरंतर ही सैकड़ों पक्षी की आयु पूरी होती है, मरते हैं, एक दूसरे को घायल करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम अपन क्या कर सकते हैं? हमारी जैन दर्शन की दया तो वहां तक सीमित है कि हमारे माध्यम से किसी को तकलीफ नहीं है। मुनिराज हैं जंगल में बैठे हैं, अब वो एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, जंगल के जानवर तो उनका जीवम जीवस्य भोजनम, तो अभी चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ेगी तो चूहे को बचाएं, तो बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ेगा, तो कुत्ते से बिल्ली को बचाएं। और बिल्ली को तो इतना तीव्र कसाई माना है कि यदि वो पकड़ ले चूहे को और तुम उसे बचाने के लिए उसकी डंडे मार के उसकी जान भी चली जाए तो भी चूहे को छोड़ती नहीं, भागेगी तो लेके भागेगी। हिरण का ऐसा नेचर है कि वो जंगल में घास चल रहा है और तुमने ऐसी आवाज करी इतना ही से भाग जाएगा, तुम वहां डरपोक कहते हैं उसे। और बिल्ली ऐसा है कि तुम डंडे पे डंडा मारते रहो उसे तो भी उसे लेके भागेगी, तुम्हें महाराज भी चाहे तो बचा नहीं सकते। और फिर अब यह दूसरी तकलीफ खड़ी हो जाएगी कि उसका तो भोजन ही ये है, तो फिर वो भूखों मर जाएगा। वो ये कहते हैं कि यदि वो नहीं खाएगा तो वो भूखों मर जाएगा, तो उसको खिलाने की व्यवस्था करो, तो अपने हम शाकाहारी भोजन देंगे उसे तो वो खाएगा नहीं है? तो फिर और उसे क्या करो। मेरा मतलब यह है कि वो बहुत लंबा काम है, उस पर आगे बढ़ने की बात जैन दर्शन नहीं कहता। जैन दर्शन तो जगत से निर्वृत्त होने की बात कहता है, है? अब अंतिम जो गाथा है इसमें वे उदाहरण दे करके ये सिद्ध करते हैं कि पांच इंद्रिय और पांच इंद्रिय के विषय ये सुख के कारण नहीं है न दुख के कारण है, ये तो बिल्कुल सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से इन्हें देखते जानते रहना यही पर्याप्त है। चलो गाथाएं पढ़ो।
कि मेरे हरा जय दिट्ठी जनस्य दिवेण लत्तिकायब्बम तह सोकम सहमादा विषया किं तत्कुर्वन्ती सैमेव जहादिच्चो तेजो उन्हो यदेव दाणवसी सिद्धो वितहाणालम सोहम च लोके तहा देवो ते मेरे हरे हो दृष्टि जिसकी उसे दीपक क्या करे जब जिय स्वयं सुख रूप हो इंद्री विषय तब क्या करे जिस तरह आकाश में दवि उष्ण तेज रुदेव है बस उस तरह ही सिद्ध गण सब ज्ञान सुख हर देव है।
हर जगह तो ऐसा उदाहरण आता है कि जिसकी आंखें ही नहीं है अथवा अंधा है आंखों की में दृष्टि नहीं है उसके दीपक क्या करेगा। ऐसा आपने कई जगह पढ़ा होगा कि आंखों में ताकत हो देखने की और अंधेरे में नहीं दिखता है तो दीपक लाओ, लेकिन अंधा आदमी कहे कि मुझे दिखाई नहीं देता है तो दीपक लाओ तो उसको क्या फायदा करेगा दीपक। मतलब उसकी आंख में देखने की शक्ति होनी चाहिए तो ही दीपक सहयोग कर सकता है। ऐसा उदाहरण आपने कई जगह पढ़ा होगा। ठीक है, कुंड कुंड की तो बिल्कुल उल्टी ही बात करते हैं। देखिए तिमेर हर है दृष्टि, कुछ जानवर ऐसे होते हैं ना उल्लू बिल्ली कि उन्हें उजेले की जरूरत ही नहीं है, अंधेरे में ही उन्हें बहुत साफ दिखता है, उनकी आंख में ही ऐसी शक्ति होती है कि जिससे सब दिखता है। उजेले में तो उन्हें तकलीफ होती है क्योंकि ज्यादा उजेला होता है ना तो चकाचौंध लगती है उनको, उल्लू को बिल्ली को नक्तनचर से बोलते हैं। तो रात्रि में क्यों ज्यादा घूमते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि तिमिर हर होती है। तो तिमिर हर है दृष्टि जिसकी, जिसकी दृष्टि में ही उजेले की व्यवस्था है उसे दीपक की क्या जरूरत है। तो कहते आत्मा स्वयं ही सुख दुख रूप होने की शक्ति रखता है तो उसे इंद्रिय विषयों की क्या जरूरत है, उसे शरीर की सुखी होने के लिए क्या जरूरत है। क्योंकि यदि शरीर की जरूरत बनी रहेगी सुखी होने के लिए तो कोई भी आदमी मोक्ष में जाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि मोक्ष तो शरीर के वियोग का नाम है।
तो नहीं, जब तक संसार में रहेगा ना तो अहम तो है, तब तक तो शरीर चाहिए सुखी होने के लिए, और बाद में फिर सिद्ध दशा में बिना शरीर के सुखी हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे, ऐसा थोड़ी होता है। यदि हमारे शरीर की निरर्थकता हमको तभी भाषित होगी जब वर्तमान में उसके होते हुए भी और हमको उसकी आवश्यकता नहीं रहे, उसके प्रति हमारी दृष्टि निरपेक्ष हो जाए। जैसे अनंत भगवान हैं, अब उनके कितनी मजबूत चक्षु इंद्री है, ब्रजबिषद नारा संगन की बनी है, पांचों इंद्रियां हैं, कितनी ब्रजबिषद नारा संगन की बनी है, और उनको अपने जानने के काम के लिए और अति इंद्री सुख भोगने के काम के लिए उन इंद्रियों की जरूरत है। तो वही बात सिद्ध में है कि सिद्ध के वो शरीर है ही नहीं, वो इनके शरीर का संयोग है, वो इतनी सी बात है। लेकिन दोनों ही में बात तो एक है ना सुख के संदर्भ में। अब वे आओ और नीचे आके कहना चाहते हैं कि ये जो बारहवें गुणस्थान में, ग्यारहवें में, दसवें में जाओ, आपके आते आते हर जीव में उसे सुखी और ज्ञान के लिए किसी परद्रव्य की अंतमात्र ही आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी दृष्टि अंधकार अंधकार नाशक हो तो उसे दीपक की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जब आत्मा स्वयं सुखरूप प्रण में होता है तब विषय क्या कर सकते हैं, विषयों का क्या काम। जिस प्रकार आकाश में सूर्य स्वयं से ही तेज उष्ण और देव है, उसी प्रकार लोक में सिद्ध भगवान स्वयं से ही ज्ञान सुख और देव है। तीन विशेषताएं सूर्य में अपने आप हैं। चंद्रमा के लिए लोग कहते हैं ना कि चंद्रमा में का जो प्रकाश है वो स्वयं का नहीं है, सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो चमकता है, स्वयं से नहीं चमकता, लेकिन सूर्य का प्रकाश स्वयं का है, इसलिए सूर्य का उदाहरण दिया। ते भगवान आत्मा का जो ज्ञान है वो स्वयं से है, तो किसी दूसरे से नहीं है। मैंने तेजी तेजपना मैंने प्रकाश, और उष्णपना मैंने गर्मपना, और देवपना मैंने महान, देवत्व मैंने महानपना, ये सब सूर्य के अपने आप हैं। उसी प्रकार सिद्ध भगवान में भी ये तीनों चीज अपने आप हैं। ये सुखाधिकार के उपसंहार की गाथाएं हैं। इन गाथाओं का भाव तत्व प्रदीप का टीका में आचार्य अमृतचंद इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो ये पेज है ना 110, इसके बाद 111 पेज है, तुम्हारी किताब है ना, उसके सबसे ऊपर की पंक्ति देखो, लिखा इति आनंद प्रपंच। इस प्रकार आनंद का प्रपंच समाप्त हुआ। प्रपंच जानते किसे कहते हैं, विस्तार, विस्तार को प्रपंच बोलते हैं। और आजकल प्रपंच कहते बहुत प्रपंच करता है ना, कोई वो कह रहे ना, पहले तो कई जब समय सार में दिया था इति अलम अलम प्रपंचे ने, अधिक विस्तार से क्या फायदा है। जिस प्रकार उल्लू बिल्ली आदि नक्तनचरों मन रात्रि में विचरण करने वालों के नेत्र स्वयं ही तिमिर नाशक होते हैं, इस कारण उन्हें अंधकार को नष्ट करने वाले दीपकादि की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार संसार में या मुक्ति में स्वयं सुखरूप प्रणोद इस आत्मा को विषयों की क्या आवश्यकता है। फिर भी अज्ञानी जीव विषय सुख के साधन हैं, ऐसी मान्यता से व्यर्थ ही विषयों का अभ्यास करते हैं, आश्रय करते हैं, सेवन करते हैं, तथापि संसार में या मुक्ति में स्वयं सुखरूप प्रणमित इस आत्मा का विषय क्या कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि सुख की प्राप्ति में इंद्रिय विषय अकिंचित कर हैं। ये उनका पिछली गाथाओं में कहा था इंद्रियां माने शरीर अकिंचित कर है, वो कुछ नहीं कर सकता, पर यहां कह रहे इंद्रिय के विषय अकिंचित कर हैं। अभी हम सारे जगत की स्थिति ये है कि एक तो पांच इंद्रियों के विषयों को जोड़ने में लगे हैं, तो इनसे हम उसको कोई सुख सामग्री बोलते हैं, और फिर ये पांच इंद्रियों को भोगने के लिए इंद्रियां स्वस्थ चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, तो फिर उस शरीर को इसलिए कि हमको वो इंद्रियों का भोग भोगने में सुविधा रहे तो शरीर को ठीक करने में लगे। आचार्य देव दोनों तरफ से ध्यान हटाना चाहते हैं और ये अत्यंत स्पष्ट कहते हैं कि ना तो संसार के सुख का भी इनसे संबंध नहीं है और मोक्ष के सुख का भी इससे संबंध नहीं है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं भाई ठीक है मोक्ष के सुख में तो नहीं है, अति इंद्रिय सुख में तो नहीं है, लेकिन इंद्रिय सुख में तो है, इसमें तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। कालिदास ने कहा ना शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो उसको अपने लोग भी कहने लग गए थे, धीरे धीरे तो यही कहने लग गए थे कि जैसे अपने जैनाचार्यों की ही सूक्ति हो, लेकिन कहीं दिखी नहीं थी, मिली नहीं थी, लेकिन अभी ये संलेखना का अध्ययन करते वक्त ये मिला एकाध जगह कि ये शरीर धर्म का साधन है, तो इसको यदि तुम नष्ट हो जाने दोगे तो अगले भव में जहां जाओगे वहां वो देह तुमको ऐसी प्राप्त होने वाली नहीं है कि जिसमें संयम पले, इसलिए तुमकी इस देह की रक्षा करनी चाहिए है। और वहां पर बिल्कुल ऐसी ही भाषा है कि ये शरीर जब तक हमारे धर्म का साधन है तब तक इसको हमें बचाना चाहिए। तुमने भी पढ़ा होगा ना, तुम मुझको तो अंदर से बहुत अटपटा लगा क्योंकि अपन तो यही पढ़ते आए थे और लोगों को समझाते थे और कहते थे कि जो ये पंडित लोग कहते वो जैन धर्म की बात ही नहीं है, वो तो कालिदास की है, और हम कहने लगे शरीर माध्यम, तो फिर हम व्यायाम पे उतर गए, फिर हम इस पे उतर गए, हम भी उतर गए। लेकिन ये जो शरीर के साधन की बात है ना, मैं एक बात और महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं यहां, क्योंकि तुम लोग यही समझते होगे मैं उसको नहीं मानता ठीक, ऐसी बात कहने वाला हूं। जैसे अपने साधु लोग हैं, मन ब्रह्मचारी लोग हैं, जिन्होंने दवाइयों का त्याग कर दिया है कि बहुत कम दवाइयों का उपयोग करना चाहते हैं, उनमें बहुत विचार करते हैं कि अहिंसक हैं कि नहीं हैं, और फिर भी हैं तो वो अंग्रेजी दवाई नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि हमें पता नहीं कैसे बनाई गई है वो, है ना। तो उसके इलाज के संदर्भ में, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई है बहुत दिनों से है कि साधुओं को थोड़ा व्यायाम करना ही चाहिए। ये जो बहुत से साधु आपने देखा होगा कि जब आहार करके आते हैं तो वे वो वज्रासन से बैठते हैं, क्योंकि वज्रासन से बैठने से पेट की जो वायु होती है वो पास हो जाती है, निकल जाती है, तो फिर वायु का प्रकोप नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। तो जब वे दवाई नहीं लेनी है और उनको स्वस्थ रहना है ना, मतलब जैसे नहीं करते तो फिर आप भोजन को ही क्यों जाते हैं, यदि स्वस्थ नहीं रहना हो तो भोजन को ही क्यों जाते हैं, तो भोजन तो इसलिए जाते हैं ना कि भाई हम जब जीवन है जब तक जिस शर्त के साथ है उसे हम पूरी करते हैं। तो जैसे वे अपनी शर्तों के साथ भोजन लेते हैं, उन्हें अपनी शर्तों के साथ स्वस्थ रहने का भी इंतजाम करना चाहिए, और उसके लिए ऐसा नहीं कोई पहलवान बनने के लिए भी व्यायाम करें, और ऐसा भी नहीं है जो भी ऐसे आसन हैं कुछ कि जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, पांच इंद्रियों को पढ़ने लायक स्वस्थ साथ रखते हैं, तो वो उनको करना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि दवाई नहीं लेते हैं, भोजन भी एक बार लेते हैं, बार बार पानी भी नहीं लेंगे तो इस जो इलाज के जो रिले चलते हैं ना, इनका तो उपयोग उनके लिए है नहीं। शुद्ध साधक दवाई लेंगे तो कहाँ वैद्य है, कौन आगे देखेगा, कौन देगा? तो कहते गृहस्थ दे देते हैं, तो गृहस्थ वैद्य थोड़ी है, डॉक्टर थोड़ी है कि वे समझते हैं कि महाराज को क्या तकलीफ है पर क्या दवाई हमें देना चाहिए। ये माताएं बहने आहार देती हैं, इनको तो एक ही समझ में आता है कि खूब घी पिला दो तो बहुत ताकत आ जाएगी और बहुत अच्छा तबीयत रहेगी, सब होगी। खिला बादाम वादाम पीस के अच्छा हलवा बना के खिला दो, गरिष्ठ भोजन खिला दो, तो वो तो उनके लिए और तकलीफ देने वाला है। मतलब स्वास्थ्य के लिए अनुकूल भोजन, बीमारी के लिए अनुकूल भोजन उन्हें मिलना चाहिए। तो कोई वैद्य तो है नहीं, जैसे अपने सुशील जी वैद्य जी हैं तो वो जाते हैं कई साधुओं की वैयावृत्ति करते हैं, तो वे आहार के संदर्भ में तो वही वैयावृत्ति कर सकते हैं, यानी वे बताएं ग्रस्तों को कि ये निर्दोष चीज है और महाराज को इस तरह की तकलीफ है तो इस तकलीफ को मेटने के लिए ये दी जानी चाहिए। बहुत दिन की बात है, एक महाराज थे, मेरा उनसे बहुत अच्छा संबंध था, वे यही बाबूनगर चैत्यालय में थे, गांव थे। उनको पाइल्स की तकलीफ हो गई थी, तो बहुत बहुत सहज है हो जाना क्योंकि पानी नहीं पीते हैं, कम पीते हैं तो पेट में कब्जियत हो जाती है, कब्जियत हो जाती होगी तो जब लेटरिन साफ नहीं होगी तो फिर धीरे धीरे पाइल्स हो जाते हैं। अब वो चाहते इलाज कराना, क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता उनके, दवाओं में आगे हिसाब नहीं बैठता। शुद्ध तेरा पंथ हम नाए गए थे, बहुत सात्विक थे, तो वो यहां आ गए अपने स्मारक में और मुझे बुलाया उन्होंने। मैं उनकी समाधि मरण उन्होंने किया था तो उनके गांव में उधर भी गया था, मैं उनके उस वक्त भी गया था। भैरव सिंह शेखावत का जो गांव था उनके बगल में उनका गांव था, कुली कुली क्या नाम था। तो उनने मेरे से ये बात कही कि मैं इसलिए आया हूं कि मेरे को ये तकलीफ है और तुम्हारा प्राकृत चिकित्सा वालों से अच्छे संबंध हैं, वैद्य सुखराम जी थे इसमें जो अपने हैं ना प्राकृत चिकित्सालय, इसमें वैद्य सुखराम जी थे, वो मेरे मित्र थे। तो बोले सुखराम जी से आपकी मित्रता है और मेरे इस इलाज के लिए आप व्यवस्था जमाओ। मैंने कहा ठीक है महाराज, मैं वैद्य जी को लेके आया, सबको बताया दिखाया और उन्होंने कहा कि इनको कच्ची स्नान लेना पड़ेगा, वो तब में गर्म पानी एक तब में रखेंगे, एक तब में ठंडा पानी रखेंगे, फिर महाराज को 10 मिनट इसमें बैठना पड़ेगा, फिर 10 मिनट इसमें बैठना पड़ेगा, फिर पेट पर मिट्टी की पट्टी बांधनी पड़ेगी। वो जो उनका उपचार था ना वहां करते थे, है ना, वो सब करना पड़ेगा। तो वो वैद्य जी ने वो बताई तो महाराज कहेंगे भी मैं तो ये कर नहीं सकता, मैं तो ये कर नहीं सकता, है ना। जैसे वो बोले मैं क्या करूं वैद्य जी वो आए, मतलब मैं तो जो उपचार है वो बता सकता, लेकिन मतलब बेचारे तुम्हारा चले गए, जो भी हुआ होगा, ज्यादा नहीं जिए वो, फिर 12 साल साल 2 साल बाद ही स्वर्गवास हुआ। सर विजय सागर नाम था क्या था, तो फिर घर में गया था, तो मैंने अपनी आंखों से सब चीज देखी ना, तो मैंने अनुभव किया कि जब आपने यदि ऐसी चीज धारण कर रहे हो तो फिर आपको वैसे ही ध्यान, हम गृहस्थों का तो ऐसा है कि यदि आपने बद परहेजी कर दी तो फिर कोई चूरन चटनी खा लोगे, फिर वैद्य के पास जाओगे, फिर डॉक्टर कुछ ना कुछ बता देगा और आपका इलाज हो जाएगा, वो मुनि आज को बता रहा हूं क्या होगा। तो उन्हें पहले से ही उसके प्रति ज्यादा सावधान रहना चाहिए और उसके अनुकूल थोड़ा व्यायाम प्राणायाम मन भी आसन वासन थोड़े करना चाहिए। मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहता हूं कि बस एकदम वो लाइन शुरू हो जाती है, वो दिन दिन भर वही चलने लगता है, वही सिखाने लगता है कि खासकर अपना तेरापंथी है ना, तेरापंथी श्वेतांबरों के अमेरिका में इनके साधु संत यही यही धंधे में लगे हैं बस, प्राणायाम व्यायाम यही कराते रहते हैं बस, उनकी क्लासें उसमें ही लगती है। लेकिन हम एक डाना नहीं, लेकिन खुद के लायक उतना तो करना ही पड़ेगा। तुम विद्यार्थियों को भी थोड़ा व्यायाम तो करना चाहिए ना, करते ही होगे, घूमना उमना, अपने को स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ के लिए मेरे को लोग यही समझते हैं कि मैं उसका सबका विरोधी हूं, एक मर्यादा के भीतर का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन वही हमें सवार हो जाए और हमको पहलवान बनना है और फिर 100 बैठके और 200 दंड और फिर अभी हम करने लग जाए क्यों, वो उसका विरोधी मैं जरूर हूं। शुद्ध सात्विक वृत्ति जिसमें कि शुद्ध सात्विक खान पान रहे, ये ऐसा जीवन जिसको संयम का मार्ग अपनाना है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो एक बीच का प्रसंग आ गया इसलिए मैंने ये बात आपको कही। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि गाथा में तो स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि जिस प्रकार सूर्य स्वभाव से तेज उष्णोदेव है, उसी प्रकार सिद्ध भगवान भी स्वभाव से ज्ञान सुख और देव हैं। जबकि तत्व प्रदीप का टीका में सिद्ध भगवान के स्थान पर भगवान आत्मा शब्द का उपयोग किया गया है। समझ गया है अंतर, ऐसा आत्मा ऐसा है वहां सिद्ध भगवान का उपयोग। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि यहां सिद्ध पर्याय अपेक्षित है या त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपेक्षित है। यानी आप कह रहे कि जितने ना सिद्ध भगवान के लिए कहा है गाथा में कि वे तेज उष्ण सूर्य के लिए उष्ण तेज और वो और उनके लिए क्या है तीन विशेषण, हाँ तो वो आत्मा त्रिकाली ध्रुव आत्मा के लिए हैं कि सिद्ध भगवान के लिए हैं। तो आचार्य जैसे तात्पर्य टीका में सिद्ध भगवान ही अर्थ करते हैं, कविवर वृंदावन दास जी परमात्म शब्द का प्रयोग करते हैं जो सिद्ध भगवान की ओर भी इंगित करता है। आध्यात्म सतपुरुष कांजी स्वामी भी इस प्रकरण पर व्याख्यान करते हुए सिद्ध भगवान का ही स्मरण करते हैं। आचार्य अम्बेचंद द्वारा भी ज्ञान सुखबा देव के लिए जिन विशेषणों का उपयोग किया गया है उनमें सिद्ध भगवान ही प्रतिबिंबित होते हैं। अतः यही लगता है कि आचार्य अम्बेचंद को भी यह सिद्ध भगवान ही अभीष्ट हैं, तथापि उन्होंने अध्यात्म के जोर में भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। देखो ये भी एक भाग्य की बात है, आज का दिन जैसे इसी के लिए है। अपन अमृत चंद्राचार्य को मैं तो कुंद कुंदाचार्य से भी बड़ा आध्यात्मिक मानता हूं, टोडामल जी भी मानते हैं। टोडामल जी ने चिट्ठी लिखी थी ना तो उन लोगों को ये लिखा था कि अध्यात्म पढ़ना हो तो आत्मख्याति पढ़ना, समय साहब नहीं लिखा आत्मख्याति लिखा था। लेकिन आज फिर यहां जब सिद्ध की जगह आत्मा करते हैं तो आत्मा अर्थ नहीं है, मैं अपना मत ये व्यक्त किया। और ये देखो ये 4-6 पंक्तियां हैं ना, तुम पढ़ते तो वैसे ही निकल जाती, लेकिन ये 4-6 पंक्तियां लिखने के लिए कितना पढ़ा होगा, समझ में आया ना। गुरुदेव के पूरे प्रवचन हम जैसेनाचार्य क्या लिखते हैं वेख लिखते हैं, कौन कौन विद्वान क्या क्या लिखता है, सबको लिखना तो आधी प्लान में आ गया, लेकिन सब जगह से पढ़ करके फिर अपना मत स्थिर करना, और यदि उसमें बराबर दोनों तरफ झूलता हो मामला तो ऐसा कह के निपटना कि आचार्यों में मैं अपने नहीं कह सकता हूं कि कौन सच है कौन झूठा है, लेकिन यहां इसमें अपना मत स्पष्ट व्यक्त किया कि भाई सिद्ध भगवान को ही लेना, यहां आत्मा नहीं लेना। तो अम्बेचंद ने आत्मा क्यों लिखा, तो वो बहुत अध्यात्म के जोर में रहते हैं ना वो, तो इसलिए उन्होंने आत्मा शब्द का प्रयोग किया। हमको ये समझना चाहिए, समझ गए। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि जिस प्रकार बिल्ली को तिमिरनाशक दृष्टि प्राप्त होने से अंधकार में देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार सुख स्वभावी भगवान आत्मा को सुख प्राप्त करने के लिए पंचेंद्रिय विषयों की आवश्यकता नहीं है। जिनका स्वभावी ज्ञान और आनंद हो, उसे ज्ञान और आनंद प्राप्त करने के लिए पर के सहयोग की क्या आवश्यकता है। कितनी स्पष्ट बात लिखी, इनका स्वभाव ज्ञान आनंद स्वभावी हूं है? अनादि से स्वभाव हमारा ज्ञान और आनंद है। अब उसके लिए भी ज्ञान और आनंद के लिए परद्रव्य की जरूरत पड़े, ये तो बहुत ही अटपटी बात है ना। जिसका स्वभाव ही ज्ञान और आनंद हो, उसे ज्ञान और आनंद प्राप्त करने के लिए पर के सहयोग की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार स्वभाव से उष्ण तेजवंत सूर्य को उष्ण व तेजवंत होने के लिए अग्नि की क्या आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार स्वभाव से ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को या सिद्ध भगवान को ज्ञानी और सुखी होने के लिए परिकीर्णच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। यद्यपि आचार्य अमरचंद की तत्व प्रदीप का टीका में सुखाधिकार यहीं समाप्त हो गया है, तथापि आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं के उपरांत भी दो गाथाएं प्राप्त होती हैं जो तत्व प्रदीपिका में नहीं है। वे दोनों गाथाएं क्रमशः अरहंत और सिद्ध भगवान की स्तुति की गई है, अतः यह कहा जा सकता है कि वे अधिकार के अंत में होने वाले मंगलाचरण रूप गाथाएं हैं। अब वे दो गाथाएं कल पढ़ लेंगे और सुखाधिकार कल खत्म हो जाएगा और कल ही फिर अपन अगला अधिकार शुरू कर देंगे। इन दो गाथाओं में ज्यादा माल नहीं है, इसलिए शुभ परिणाम अधिकार शुरू कर देंगे। अभी कितने दिन और हैं? दो तीन दिन और हैं, जितनी गाथाएं हो जाएंगी अच्छी।